जी आगे सबक देखिए भाई। किताबुल मुजारअती हिया अक्दु ज़रअ बिबाज़िल खारिज वला तसिहु इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाहु तआला लिमा रुविया अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल मुखाबरती वली अन्नहा इस्तिजारुल अर्ज़ बिबाज़ि मा यखरुजु मिन अमलिही फकान फी मअना क़फीज़ अत्तहान وصحت عندهما وبه يفتى لتعامل الناس وللاحتياج بها والقياس على المضاربة। आज हम किताबुल मुजारा पढ़ेंगे भाई। मुजारा कहते हैं खेत वगैरह को बटाई पर देना, खेत को बटाई पर देना। यहां भी आमतौर पर राइज है, लोगों की जमीन होती है वो दूसरों को बटाई पर देते हैं और फिर वो उसमें फसल काश्त करते हैं और फिर उसमें तय होता है कि जितनी फसल पैदा होगी आधी आपकी होगी मेहनत करने वाले की और आधी जमीन वाले की, या दो सुलुस जो हैं वो जमीन वाले के होंगे और एक सुलूस मेहनत करने वाले का, जो भी तय हो जाए उसके मुताबिक भाई। तो ये क्या है, मुजारात है भाई, इसको मुजाराह कहते हैं और उर्दू में कहेंगे खेत को बटाई पर देना। तो कहते हैं ये अक्दु ज़रअ बिबाज़िल खारिजी, ज़रअन कहते हैं काश्त करना भाई, खेत में फसल काश्त करना। और खारिज, याद रखिए खारिज कहते हैं पैदावार को, जो जो फसल हासिल हुई, ये जो पैदावार हासिल हुई इसको अरबी में क्या कहते हैं, खारिज। तो मुजारा किसे कहते हैं, बतला रहे हैं, कहते हैं ये अक्दु ज़रअ, ये काश्त का अकद करना है, बिबाज़िल खारिजी, बाज़े खारिज के बदले, कुछ पैदावार के बदले, कुछ पैदावार पर काश्त का अकद करना, कुछ पैदावार पर। भाई मेरी जमीन है, मैं किसी शख्स को देता हूं कि आप इसमें फसल काश्त कर लें, तो मैं उसे क्या कहूंगा, कुछ फसल आपकी या सारी फसल आपकी? जाहिर सी बात है कुछ फसल दूंगा, कुछ मेरा हिस्सा होगा और कुछ उसका हिस्सा होगा, मसलन आधा आधा तय कर लेते हैं, या एक सुलुस एक का, दो सुलुस दूसरे के, या चार हिस्से करेंगे जी, एक रुबो तुम्हारा होगा, तीन रुबो मेरे होंगे। बात समझ में आ रही है? तो सारी फसल पर ये आकद नहीं होता, बल्कि कितने पर होता है, बाज़े फसल पर, कुछ हिस्से पर, वो या निसफ होगा या सुलुस या रुबो वगैरह। तो कहते हैं ये अक्दु ज़रअ बिबाज़िल खारिजी, ये काश्त का आकद है बिबाज़िल खारिजी, कुछ पैदावार के बदले, कुछ पैदावार पर। वला तसिहु इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये मुजारात सही नहीं है, वो इसको नाजायज फरमाते हैं, नाजायज करार देते हैं। याद रखो ये जो मुजारात है ना, मुजारात, इसका एक नाम मुखाबरा भी है, मुजारा मुखाबरा, यह आगे हदीस में भी आ रहा है मुखाबरा, और एक तीसरा नाम इसका है मुहाकला, मीम हा अलिफ काफ दो नुक्तों वाला लाम और गोलता, मुहाकला। तो मुजारा लफ्ज आ जाए या मुखाबरा आ जाए या मुहाकला, तीनों का एक ही माना है भाई, तीनों मुजारात को कहते हैं भाई। पहले समझ लें मसला, इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये मुजारात दुरुस्त नहीं, ये जायज नहीं है भाई, जबकि साहिबैन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये जायज है भाई, जायज है। और फतवा साहिबैन के कौल पर है भाई, फतवा किसके कौल पर है, साहिबैन के कौल पर फतवा है, चुनांचे ये अब आम राइज है और ये लोग करते हैं, तो ये जायज है शरान भाई। जबकि इमाम साहब फरमाते नहीं, इमाम साहब फरमाते हैं, दो दलीलें उनकी जिक्र की इमाम साहब की, एक दलील ये जिक्र की कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुखाबरा से मना फरमाया है, हदीस में क्या आया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुखाबरा से मना फरमाया है, और मुखाबरा किसको कहते हैं, मुजारात को ही कहते हैं, तो मालूम हुआ मुजारात से हुजूर ने मना फरमाया है, मदीना वाले मुजारात को मुखाबरा कहते थे भाई, तो हुजूर ने इसे मना फरमाया है, एक दलील इमाम साहिब की यह है। और दूसरी दलील इमाम साहिब की वो जिक्र करेंगे कि ये कफीजुत्तहान की तरह है भाई, किसकी तरह है? कफीजुत्तहान भाई, कफीजुत्तहान भाई, कफीजुत्तहान। कफीज तो आप जानते हैं वो गल्ला मापने का एक पैमाना होता था, आज भी बहुत से देहात में राइज है। तो कदीम जमाने में ये गल्ला तोल कर नहीं बेचा जाता था, आजकल तो तोल कर बेचते हैं। कदीम जमाने में एक बर्तन होता था, जैसे दूध का एक बर्तन है उसमें 1 लीटर माप कर देते हैं, या 2 लीटर या 3 लीटर जितना आपने लेना हो, या जैसे पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हैं तो वो भी उसी लीटर के हिसाब से होता है कि 1 लीटर डलवाना है या 2, तो वहां वजन की बात नहीं होती कि 1 किलो या 2 किलो। इसी तरह ये गंदम और गल्ला मापने का एक पैमाना होता था, अच्छा खासा बड़ा होता था, और ये मसलन एक कफीज 1 दिरहम का है, 2 कफीज होंगे तो 2 दिरहम के, 3 कफीज होंगे तो 3 दिरहम के, इस तरह इनको बेचा जाता था। तो इसको कहते हैं कैल भाई, कैल मापना, मापना। ये दूध भी किस तरह बेचा जाता है? कैल करके, माप कर। इसी तरह पेट्रोल भी किस तरह बेचा जाता है? माप कर, कैल कर कर। कुछ चीजें वजनी हैं, कुछ चीजें कैली हैं भाई, उनको कैल करके बेचा जाता है। तो ये गल्ला भी किस में से है? कैली चीजों में से है, या यूं कहें मौजू, कुछ चीजें मौजूनात हैं और कुछ मकीलात हैं भाई, मकीलात। तो इमाम साहब, हाँ, तो मैं कैल की बात कर रहा था। तो वो जो पैमाना है उसको अरबी में कहते हैं कफीज भाई, कफीज। और तहान कहते हैं गंदुम पीसने वाला, तहन का माना होता है ना तहानून, तहन का माना होता है पीसना, पीस कर आटा बनाना। तो तहान वो जो पीसने वाला है, बाजार में बाज लोग बैठे होते हैं, वो काम ही ये करते हैं, आप उनके पास अपनी गंदम ले जाते हैं, वो आपको पीस कर देते हैं और उसके बस पैसे लेते हैं। मसलन 1 मन है तो 100 रुपया लेंगे, 2 मन है तो 200 ले लेंगे। सूरत सबको समझ में आ रही है भाई? तो ये जो तहान है इसके साथ अमूमन लोग यूं करते कि इसके पास 1 मन गंदम ले जाते और कहते इसको पीस दो, पीसने के बाद इसमें से मसलन मसलन 1 किलो या 1 पैमाना, 1 कफीज जो है आटा आपका होगा, 40 कफीज में से 1 कफीज आपका होगा। तो देखो ये 1 कफीज किसका हुआ? गंदम पीसने वाले का। तो ये हुआ कफीजुत्तहान, पीसने वाले का कफीज। हर 40 मसलन हर 40 में से 1 कफीज, 80 हुए तो कितने उसके? 2। अगर 120 हुए तो उसके कितने? 3 कफीज। तो इस तरह वो उजरत लेते थे, इससे मना फरमाया है शरीयत ने भाई, ये जायज नहीं है भाई, कफीजुत्तहान जायज नहीं है। इसलिए क्योंकि आप उसको उजरत में क्या दे रहे हैं? आटा, और उसका काम भी क्या है? आटा बनाकर देना। तो ऐसी चीज को उजरत पर, उजरत के तौर पर तय करना जो उस आमिल, उस काम करने वाले के अमल से बने, उसको उजरत में तय करना ठीक नहीं है। कोई चीज जो किसी मजदूर के अमल से बने और आप उसी को उजरत के तौर पर दें, यह ठीक नहीं। अब उसका काम क्या था? आटा बनाना, और उजरत में भी उसे क्या दे रहे हैं? आटा दे रहे हैं। तो देखा ये उसी के जो अमल वो करता है वही चीज आप उसको दे रहे हैं, ये जायज नहीं है भाई। क्यों नहीं जायज? वजह ये कि आप इसके अदा करने पर कादिर नहीं है जब तक वो अपना काम न कर ले। जब तक वो पीसेगा नहीं, आप आटा दे सकते हैं? आपके पास आटा है ही नहीं, वो पीसेगा तो आटा बनेगा ना। तो आप एक चीज के अदा करने पर कादिर ही नहीं है, उसको उजरत कैसे ठहराते हो भाई? उजरत ऐसी चीज को ठहराओ जिसकी आप अदा करने पर कादिर हो, जब भी देना चाहे, चाहे पहले देना चाहे, चाहे बाद में देना चाहे। यहां बाद में तो हो सकता है, पहले तो नहीं, तो गोया आप उस पर कादिर ही नहीं है अदा करने पर। ये इसी तरह है जैसे एक शख्स को आप कहें कि ये 40 मन, ये 40 बोरी गंदम यहां से उठाओ और फला मेरे गांव में पहुंचा दो, तो 1 बोरी आपकी। 40 बोरी पहुंचाओगे तो कितनी बोरी आपकी? 1 बोरी। 80 पहुंचाओगे तो कितनी बोरियां आपकी? 2 बोरियां। वो जब पहुंचा, आपने क्या कहा है? पहुंचाओगे तो इसमें से 1 आपका। तो आप उस बोरी को उसके देने पर कादिर ही नहीं है, यानी आप उसको अदा नहीं कर सकते। अभी तो बोरियां यहां पड़ी हैं ना, गांव में तो आपके मौजूद नहीं है, मंजिल पर तो मौजूद नहीं है, तो आप उसको अदा करने पर कादिर नहीं है। तो एक तो इसमें यह खराबी कि ऐसी चीज को उजरत ठहरा रहे हैं कि वो शख्स मजदूर को वो उजरत अदा करने पर कादिर ही नहीं है। इस वक्त जब अकद कर रहा है उस वक्त अदा करने पर कादिर नहीं। और नीज आपने उसको क्या कहा, 40 कफीज को पीसोगे तो एक कफीज आपका। भाई 40 में से जब वो एक ले लेगा तो आपके कितने हो गए, 39। वो गोया 39 कफीज उसने आपके लिए पीसे, एक कफीज तो उसने अपने लिए पीसा है, और आपने तो क्या कहा था 40 पर एक होगा, तो उसने तो 39 पीसे और उनमें से एक उसका 39 आपके हुए, एक तो उसका अपना है भाई, वो तो खुद अपने लिए अमल गोया उसका हो गया भाई। कि मजदूर के अमल से या मेहनत करने वाले के अमल से जो चीज तैयार हो, जो चीज हासिल हो, उसी को उजरत ठहराना ये शरीयत ने इससे मना किया है। इसको क्या कहते हैं, कफीजुत तहान। क्या कहते हैं, बस मुख्तसर लफ्ज बोल देते हैं और इसके अंदर वो सारी सूरतें आ गई जिसमें उसी के अमल का दखल होता है। और कोई चीज आप किसी के पास ले जाते हैं, इस चीज में यूं कर दो और फिर जब ये सारी तैयार हो जाए तो हर 40 में से एक आपकी हो जाएगी। तो ये सब किसके किस में शामिल हो गए, कफीजुत तहान, यानी वो चीज उजरत में मुतय्यन करना जो उसी के अमल से बने, उसी के अमल से वजूद में आए। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की दो दलीलें हो गई, एक तो हदीस हो गई कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुखाबरा से मना फरमाया, और अहले मदीना मुजारा को क्या कहते थे, मुखाबरा कहते थे भाई, मुखाबरा। और दूसरी दलील इमाम साहब की, वो फरमाते हैं ये मुजारा में उजरत के तौर पर क्या देंगे, मसलन आपकी जमीन है, किसी शख्स को आपने दे दी कि आप मेहनत करना, ये वाली फसल इसमें मसलन गंदम उगाओ, और फिर जब फसल हासिल होगी आधी फसल आपकी होगी और आधी फसल मेरी होगी। अब देखिए ये फसल किसकी मेहनत से हासिल हो रही है, उसी मजदूर के, और उसी को आप उजरत में दे रहे हैं भाई। तो ये कफीजुत तहान के माना में हुआ, वो चीज जो उसी के अमल से वजूद में आई, उसी के अमल की वजह से बनी, आपने क्या किया उसी को उजरत में ठहराया, और ये जायज नहीं है, शरीयत ने इसे मना किया है। इसको क्या कहते हैं, कफीजुत तहान भाई। देखिए अब किताब पर तर्जमा कहते हैं, वला तसिहु इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक मुजारा सही नहीं है, लिमा रुविया अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ से मुराद माँ रुविया, ये जो माँ है ना, माँ से मुराद है हदीस, हदीस, क्योंकि ये इसमें मौसूल है ना, और इसमें मौसूल आपने पढ़ा है मारिफा होता है, और मारिफा वो है जो किसी जात मुअय्यन पर दलालत करे, तो इसमें मौसूल है ये भी किसी जात पर दलालत करेगा, ये कोई चीज इसका मदलूल होगी, और यहां पर इसका मदलूल क्या है, क्या मुराद है इससे, हदीस भाई। तो इस माँ का तर्जमा किसके साथ कर लो, हदीस के साथ कर लो। तो कहते हैं लिमा रुविया, बवजह उस हदीस के जो रिवायत की गई, अनी नबी ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कौन सी हदीस, के नहा अनिल मुखाबराती, के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया मुखाबरा से, और मुखाबरा तो अहले मदीना किसको कहते हैं, मुजारात को, तो मालूम हो मुजारात से मना फरमाया। दूसरी दलील, वली अन्न हस्ती जारुल अर्जी बिबाजी मा यखरुजु मिन अमलिही, और इसलिए क्योंकि ये जो मुजारात है, इस्तीजारुल अर्जी, ये जमीन को किराए पर लेना है, ये जमीन को, मुजारात में जमीन एक की होती है ना और मेहनत दूसरे की होती है, तो ये कोई शख्स को, ये इसी तरह जैसे जमीन को किराए पर लिया जाए, भी बाजी मा या खुरुजू, उस बाज पर जो उससे पैदा हो, जो फसल उससे उगे, जो फसल जो पैदावार उससे निकले, मिन अमली ही, इस किराए पर लेने वाले के अमल से, इस किराए पर लेने वाले के, उसने किराए पर जमीन ली है और उजरत क्या तय की, फसल, और ये फसल खुद इसके अपने अमल से पैदा होगी, जो मजदूर है जिसने किराए पर जमीन ली है, माना समझ में आ रहा है। तो कहते हैं वली अन्न हस्ती जारुल अर्ज़ी बिबाज़ी मा यखरुजु मिन अमलिही, और इसलिए क्योंकि ये जमीन को किराए पर लेना है, बिबाज़ी मा यखरुजु, बाज़ उस फसल के जो उससे उगे, जो उससे पैदा हो, मिन अमलिही, उस किराए पर लेने वाले के अमल से, فکان فی معنی قفیز الطحانی, تو یہ قفیز الطحان کے معنی میں ہے بھائی, یہ جو اجرت ہے یہ قفیز الطحان کے معنی میں ہے. آگے دیکھیے, وصحت عندهما وبه يفتى, اور مزارعت صحیح ہے صاحبین رحمهما اللہ کے نزدیک, وبه يفتى, اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے, اسی پر فتویٰ ہے. صاحبین کی کیا دلیل ہے؟ صاحبین کی تین دلیلیں ذکر فرما رہے ہیں. نمبر ایک, لتعامل الناس, لوگوں کا تعامل ہے اس پر, لوگ باہم اس کا معاملہ کرتے ہیں. یاد رکھیے شریعت میں بہت سی جگہ لوگوں کے تعامل کی وجہ سے ایک چیز کی اجازت دے دی جاتی ہے, یہ لوگوں میں رائج ہے, لوگ اس طرح کرتے ہیں. اگرچہ قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے, عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس کو ناجائز ہونا چاہیے, شرعی اصولوں کی روشنی میں اسے ناجائز ہونا چاہیے, لیکن شریعت اس کی اجازت دے دیتی ہے لوگوں کے تعامل کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں لتعامل الناس, لوگوں کے تعامل کی وجہ سے. تعامل یعنی باہم آپس میں معاملات کرتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں لوگ, زمینیں ایک دوسرے کو ٹھیکے پر دیتے ہیں, بٹائی پر دیتے ہیں. وللاحتیاج بها, دوسری وجہ للاحتیاج بها, کہ اس کی ضرورت بھی ہے, اس کی ضرورت بھی ہے. بھئی دیکھیے نا, ایک شخص کی پاس زمین تو ہے لیکن وہ محنت نہیں کر سکتا, ضعیف ہے, کمزور ہے, اور ایک شخص ہے وہ مضبوط ہے, طاقتور ہے, محنت تو کر سکتا ہے لیکن اس بیچارے کے پاس زمین نہیں ہے. تو دونوں محتاج ہوئے, زمین والا محتاج ہوا کہ کوئی محنت کرنے والا ہو, اور محنت کرنے والا محتاج ہوا کہ کوئی زمین اس کے پاس ہو. تو لہذا دونوں محتاج ہوئے, اور ضرورت کی بنا پر بھی شریعت بہت سی چیزوں کی اجازت دے دیتی ہے جس کے لوگ محتاج ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے مشہور ضابطہ پڑھا ہوگا, الضرورت تبیح المحظورات, الضرورت تبیح المحظورات, کہ ضرورت جو ہے تبیح, مباح کر دیتی ہے, جائز کر دیتی ہے کس چیز کو؟ المحظورات, ممنوعہ چیزوں کو. جو چیز ممنوع ہونی چاہیے تھی شرعی اصولوں کی روشنی میں, لیکن ضرورت کیا کر دیتی ہے؟ ان کو مباح کر دیتی ہے, جائز قرار دے دیتی ہے. اور پھر وہ فقہا بتلاتے ہیں کہاں ضرورت ہے یا نہیں, ورنہ تو ہر شخص کہے گا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, وہ ہر جگہ کیا کرے گا, وہ اپنے لیے راستہ نہیں بھائی, نہیں, شرعی اصولوں کا لحاظ رکھنا ہوگا, قوانین کا لحاظ رکھنا ہوگا, جس میں لوگ واقعی جس کی محتاج ہوں, ضرورت ہو ان کو, اور تو وہ فقہا بتلائیں گے بھائی. تو کیا ضابطہ کیا ہوا؟ الضرورت تبیح المحظورات. تو کہتے ہیں لتعامل الناس, لوگوں کے تعامل کی وجہ سے, وللاحتیاج بها, اور نیز اس مزارعت کے احتیاج کی وجہ سے, اس کی ضرورت کی وجہ سے, والقیاس علی المضاربت, اور مضاربت پر قیاس کرتے ہوئے. کس پر قیاس کرتے ہوئے؟ تیسری دلیل صاحبین کی یہ ہے کہ وہ اس کو قیاس کرتے ہیں مضاربت پر. مضاربت آپ جانتے ہیں, ایک شخص ہے اس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن کاروبار کا تجربہ نہیں, اور دوسرا شخص ہے اس کو کاروبار کا تجربہ تو ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں, تو دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوئے. تو اس شریعت نے مضاربت کی اجازت دی ہے کہ پیسہ ایک کا ہو اور محنت دوسرے کی ہو, اور نفع کو آپس میں طے کر لیں کہ مثلا نصف نصف آپس میں دونوں تقسیم کریں گے, تو آپ سرمایہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں, وہ کاروبار کرتا ہے, دن رات لگا رہتا ہے, اور پھر جتنا نفع آتا جاتا ہے, مثلا آدھا آدھا طے ہوا تھا تو وہ آدھا نفع آپ کو دیا کرے گا اور آدھا نفع خود رکھا کرے گا. دیکھو اس سے دونوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. تو جیسے مضاربت میں پیسے والے کو محنت کرنے والے کی ضرورت تھی اور محنت والے کو پیسے کی ضرورت تھی, یہاں بھی اسی طرح ہے بھائی, کہ زمین والے کو محنت کرنے والے کی ضرورت ہے اور محنت کرنے والے کو زمین کی ضرورت ہے. مضاربت بھی کس کی طرح ہوئی؟ مضاربت کی طرح, لہذا یہ جائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی, بشرط صلاحیت الارض للزرع واہلیت العاقدین وذکر المدت ورب البدر وجنسه وقسط الاخر والتخلیت بین الارض والعامل والشرکت فی الخارج. اب مزارعت کی شرائط ذکر کرنے لگے ہیں کہ پہلی شرط کیا؟ بشرط صلاحیت الارض, بئی شرط مزار, اور اس کا تعلق ہے صحت سے, اوپر جو آیا نا متن میں صحت, یہ کہ مزارعت صحیح ہے بشرط صلاحیت الارض, بئی شرط کہ زمین میں صلاحیت ہو لزرعی, کاشت کی, जमीन क्या हो, काबिले काश्त हो, ये ना हो ऐसी जमीन दे दे भाई कि जहां काश्त हो ही नहीं सकती। तो पहली शर्त यह है कि जमीन में सलाहियत हो लिज़रई काश्त की, वह अहलियत अलाकिदैनी। दूसरी शर्त यह कि वो जो अकद करने वाले हैं वो अहल भी हों, उनमें अहलियत भी हो, यानी वो आकिल हों। क्या हों? आकिल हों। वैसे तो आकिल बालिग दोनों शामिल होते हैं, दोनों को जिक्र किया जाता है, लेकिन यहां सिर्फ आकिल काफी है, आकिल काफी है। क्योंकि अगर बच्चा समझदार है तो वो भी याकद कर सकता है भाई, उसको इजाजत दी हुई है बड़ों ने और वो समझदार है, उसकी अपनी जमीन है तो वो याकद कर सकता है। सूरत समझ में आ गई? हां, आकिल जरूरी है। तो मजनून निकल गया भाई, इससे मजनून निकल गया। तो पहली शर्त क्या थी कि जमीन क्या हो, काश्त के काबिल हो, उसमें सलाहियत हो काश्त की, वह अहलियत अलाकिदैन। दूसरी शर्त क्या कि आकद करने वाले अहल हों, यानी आकिल हों भाई। वज़िक्रिल मुद्दती। तीसरी शर्त यह है कि मुद्दत को जिक्र किया जाए, आई बी शर्ते जिक्रिल मुद्दती। ये सब शर्त के तहत आ रहे हैं भाई, और ये शर्त की मुद्दत जिक्र की जाए भाई। मुद्दत तय करना जरूरी है कि मैं 3 माह के लिए जमीन आपको दे रहा हूं, या 6 माह के लिए दे रहा हूं, या साल के लिए दे रहा हूं, या 5 साल के लिए दे रहा हूं, वो मुद्दत तय करना जरूरी है। लेकिन याद रखिए, हमारे इलाके में यहां लोगों में उर्फ में मुद्दत तय नहीं करते, उर्फ में हमारे यहां मुद्दत तय नहीं करते, लिहाजा ये मुद्दत की शर्त हमारे यहां नहीं होगी, क्योंकि उर्फ में ऐसा नहीं है, लोगों की आदत नहीं है। किसी को जमीन फसल के लिए देते हैं तो ये नहीं कहते कि 3 माह के लिए है, या 3.5 माह के लिए है, या 4 माह के लिए, मुद्दत तय नहीं करते। तो फिर उस सूरत में यहां हमारे यहां मुद्दत की शर्त नहीं होगी। हां, पहली फसल होते ही अकद खत्म हो जाएगा, फसल होते ही अकद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मसलन मैं किसी को अपनी जमीन देता हूं, जिक्र ही नहीं करता मुद्दत, क्योंकि ये मौसम ही किसका है, मसलन गंदुम का मौसम है, तो मैं किसके लिए दे रहा हूं उसे गंदुम, जब मैंने जिक्र कर दी तो पता है गंदुम इस मौसम में होती है, 4 महीने 5 जितने भी अरसा है उस फसल का उतने तक रहेगी उतने, और जब वो फसल पक कर तैयार हो गई तो आकद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सूरत समझ में आ गई? तो हमारे यहां मुद्दत तो जिक्र मुद्दत शर्त नहीं है, लेकिन पहली फसल होते ही वो आकद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हां, अगर आप लंबा आकद करना चाहते हैं तो फिर बाकायदा मुद्दत तय करो कि 1 साल के लिए दे रहा हूं या 5 साल के लिए दे रहा हूं। ये माना है वदी क्रिल मुद्दती, और मुद्दत को जिक्र करने की शर्त पर सही हो जाएगी। वरब बिल बजरी। बजर कहते हैं बीज को भाई। रबुल माल का क्या माना होता है? माल वाला। तो रब वाला के माना में आता है, बात समझ में आ गई? जैसे जू माल का क्या माना होता है? माल वाला। तो रबुल माल का माना भी माल वाला। तो रबुल बजर किसे कहेंगे? बजर, जाल को साकिन पढ़ना है, रबुल बजरी, बीज वाला भाई। आकद में यह भी तय करना जरूरी है कि बीज कौन लाएगा भाई। भाई बड़ा खेत है, जाहिर सी बात है उसमें 2 बोरी या 3 बोरी बीज तो डलेगा, अगर तय नहीं करोगे तो फिर तो बाद में झगड़ा होगा भाई। एक कहेगा बीज तुम लेकर आओ, दूसरा कहेगा बीज तुम लेकर आओ, उसका अच्छा खासा खर्चा होता है। तो वरब बिल बजरी, बीज का जिक्र करना यह भी शर्त है। वह जिन्स ही, और उसकी जिन्स को जिक्र करना भी शर्त है कि किस चीज की कौन सी फसल काश्त करेंगे, गंदुम है या चने हैं या कोई और फसल है, उसकी जिन्स मुतायन होनी चाहिए कि फला फसल। व किस्तिल आखरी, और किस्त कहते हैं हिस्से को, और दूसरे के हिस्से को जिक्र करना भी जरूरी है भाई कि मसलन कितना हिस्सा देंगे, निसफ आपका होगा और निसफ मेरा होगा, या 2 सुलुस आपके होंगे और 1 सुलुस मेरा होगा, या रुबो आपका होगा और 3 रुबो मेरे होंगे, जो भी तय कर लें भाई, लेकिन तय करना जरूरी है भाई। व तखलियती बैनल अर्ज वल आमिली जी। अगली शर्त है कि जमीन और आमिल, आमिल यानी मेहनत करने वाला, जो उसको फसल उसमें उगाएगा, जो मेहनत करेगा। वह तखलियती, खाली करना, खाली छोड़ना, बैनल अर्ज वल आमिली, जमीन और अमल करने वाले को, यानी जमीन उसके हवाले कर देना पूरे तौर पर। अगर एक शख्स दूसरे को जमीन देता है और कहता है कि हर महीने के आखिरी जुमेरात को यहां पर हमारे खेल तमाशे हुआ करेंगे इस जमीन के अंदर, भाई ये तो आपने जमीन पूरी तरह हवाले नहीं की, भाई वो कैसे फसल उगाएगा भाई, तो जमीन पूरे तौर पर उसके हवाले कर दे। ये माना है तखलिया का, माने खाली छोड़ना, खाली करना। वह तखलियती बैन अल अर्ज़ वल आमिली, खाली कर देना, खाली छोड़ देना जमीन को और आमिल को। वह शिरकत फिल खारिज, और शिरकत हो की शर्त है, अगली शर्त क्या है कि शिरकत होनी चाहिए फिल खारिज, पैदावार में, पैदावार में शिरकत होनी चाहिए। मसलन जो भी पैदावार हासिल होगी उसका आधा आपका होगा, आधा मेरा, तो शिरकत है या नहीं, पूरी पैदावार में शिरकत है। लेकिन अगर कोई यह कह देता है कि भाई पैदावार जो हासिल होगी तो पहले 100 मन वो तो होंगे मेरे, जमीन वाला क्या कहता है, 100 मन निकाल के अलग रखेंगे वो मेरे होंगे, बाकी के उसमें आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूंगा। ये तो आपने वो 100 मन में शिरकत खत्म कर दी या नहीं, तो ये 100 मन तो आपने अपने लिए कर लिए, और हो सकता है जमीन में कोई आफत आ जाए, कोई फसल खराब हो जाए, कोई आंधी तूफान आए, और वो सिर्फ 100 मन ही हासिल हो या 100 मन से भी कम हासिल हो, वो तो सारे आप ले जाएंगे, वो उस बेचारे को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लिहाजा इसमें क्या जरूरी है कि जो भी पैदावार हो उसमें क्या होनी चाहिए, शिरकत होनी चाहिए भाई, सारे के अंदर शिरकत हो। हत्ता कि अगर आपने किसी को जमीन दी और उसको कहा कि भाई जमीन का वो जो फला कोना है ना, फला कोना, वो 1 एकड़ जो जमीन है उसकी पैदावार मेरी होगी, बाकी में हम दोनों शरीक हैं, तो भी ये अकद फासिद हो गया। ऐसी शर्त लगाई जो मुक्तज़ा अकद के खिलाफ है। अकद तो क्या, मुजारात तो क्या तकाजा करता है कि सारी पैदावार में क्या होनी चाहिए, शिरकत होनी चाहिए, और आपने एक मखसूस हिस्से को अपने लिए अलग कर लिया। भाई हो सकता है सारी फसल खराब हो जाए, उसी हिस्से की एक फसल बाकी रह जाए, वो तो सारी आप ले जाएंगे, भाई उस बेचारे को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखा आपने एक हिस्से में शिरकत को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हालांकि शिरकत तो शराइत में से है, शर्त है तो शय है, शर्त नहीं, शर्त है तो मशरूत है, शर्त नहीं तो मशरूत भी नहीं। ये माना वह शिरकत फिल खारिज, और शिरकत हो खारिज में, खारिज में शिरकत की शर्त पर। भाई इबारत को जरा जोड़ो, पीछे क्या आया था, सहत बिशर्ती सलाहियत लफ्ज, ये बिशर्त का ताल्लुक किससे है, सहत सही हो जाएगी इस शर्त पर कि जमीन में क्या हो, सलाहियत हो। इस अहलियत का आतफ सलाहियत पर है, और बिशर्ती अहलियत आकिदैनी, इबारत जोड़ रहे हैं, आकद करने वालों की अहलियत की शर्त पर। आगे क्या आया, व जिक्रिल मुद्दती, इसका आतफ फिर उसी सलाहियत पर है, बिशर्ती जिक्रिल मुद्दती, और इस शर्त पर कि मुद्दत क्या की जाए, जिक्र की जाए। आगे जो आ रहा है ना, रब्बुल बजर, रब्बिल बजर व जिनसी ही व किस्तिल आखरी, ये तीनों, इन तीनों का आदफ है मुद्दत पर, किस पर, मुद्दत पर, क्योंकि ये वो चीजें जिनको जिक्र किया जाएगा, तो जिक्र के तहत आ जाएंगी। जिक्रिल मुद्दती व जिक्री रब्बिल बजरी व जिक्री जिनसी ही व जिक्री किस्तिल आखरी, और सब पर शर्त फिर दाखिल हो रहा है, बिशर्ति जिक्रिल मुद्दती, बिशर्ति जिक्री रब्बिल बजरी, बिशर्ति जिक्री जिनसी ही, और बिशर्ति जिक्री किस्तिल आखर, दूसरे की हिस्से को जिक्र करने की शर्त पर सही होगी। फिर आगे आया तखलिया, तखलिया का आता फिर उसी सलाहियत पर है, ऐ बिशर्ति तखलियती बैन अल अर्ज़ वल आम, तखलिया को जिक्र नहीं करना, तखलिया फेल है, उसको करना है, जमीन को खाली छवाले उसके करना है, उस पर कोई काम खुद नहीं और करना। और शिरकत का आतफ भी फिर उसी सलाहियत पर है, बिशर्ति शिरकत फिल खारिज, कि पैदावार में शिरकत की शर्त पर सही होगी। तो ये कितनी शर्तें हो गई, जरा गिने भाई, सलाहियत अर्ज 1, अहलियत आकिदैन 2, जिक्र मुद्दत 3, जिक्र रब्बुल बजर 4, जिक्र जिन्स 5, जिक्र किस्त आखर 6, तखलिया 7 और शिरकत 8। तो ये 8 शर्तें हो गई भाई। आगे देखिए, फतब तुलु इन शुरी तली अहदी ही मा कुफजान उन मुसम्मात, तो मुजारात बातिल हो जाएगी अगर शर्त लगाई गई ली अहदी ही मा किसी एक के लिए, कुफजान उन मुसम्मात, कैसे, कफीज, قفزان جمع ہے قفیز کی، وہ جو پیمانہ ہے. مسمات کا معنی ہے معین، اور تو مزارعت باطل ہو جائے گی اگر شرط لگا دی گئی ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے. قفزان مسمات معینہ قفیز، کسی کے لیے معینہ قفیزوں کی شرط لگا دی تو یاقت کیا ہو جائے گا؟ باطل. مثلا ابھی میں نے ذکر کیا کہ جتنی پیداوار ہوگی پہلے 100 من میرے ہوں گے، پہلے سو قفیز میرے ہوں گے، تو یہ معین قفیز کی ایک کے لیے شرط لگا دی تو یاقت کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی 100 قفیز ہی گندم پیدا اور پیدا ہی نہ ہو، کوئی طوفان آیا فصل ضائع ہو گئی، اور تو اس میں شرکت ختم ہو جاتی ہے. فتبطل ان شرط لی احدہما قفزان مسمات، تو مزارعت باطل ہو جائے گی اگر شرط لگا دی گئی ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے معینہ قفیزوں کی، او ما یخرج من موضع معین، یا شرط لگا دی گئی دونوں میں سے کسی ایک کے لیے، ما وہ پیداوار، یخرج من موضع معین جو پیدا ہو کسی معین جگہ سے، کسی معین جگہ کی پیداوار کی شرط ایک کے لیے لگا دی، جیسے ابھی ذکر کیا کہ فلاں جو کونے والی فصل ہوگی 1 ایکڑ کی وہ ساری میری ہوگی، تو اس میں شرکت کو ختم کر دیا، لہذا یاقت کیا ہو گیا؟ باطل. یہ معنی ہے یا شرط لگا دی گئی دونوں میں سے کسی ایک کے لیے، ما اس فصل کی، یا خروج جو پیدا ہو، من موضع معین کسی معین جگہ سے، او رفع رب البزر بزرہ، یا شرط لگا دی گئی کس چیز کی؟ رفع رب البزر بزرہ، کہ رب البزر جو ہے بیج والا جو ہے وہ اٹھائے گا بزرہ اپنے بیج کو. رب البزر کے بیج اٹھانے کی شرط لگا دی گئی، مثلا اس نے کیا کہا کہ بیج میری طرف سے ہوگا، بیج میں لگاؤں گا، لیکن فرض کرو مثلا دیکھو اس کھیت میں 3 بوری بیج ڈلے گا، تو جب پیداوار حاصل ہوگی تو پہلے میں 3 بوری بیج کے بدلے خود رکھوں گا، باقی فصل ہم دونوں آدھی آدھی کریں گے. 3 بوری جو میں نے بیج ڈالا ہے وہ میں پہلے نکال کر الگ کروں گا، 3 بوری میں اپنے لیے الگ کر لوں گا. اب دیکھو یہ اسی طرح ہو گیا نا، جیسے وہ اپنے لیے کچھ معین قفیز علیحدہ کر لیتا تھا، اس نے بھی کیا کر لیا؟ کچھ معین قفیز علیحدہ کر لیے. ہو سکتا ہے فصل ساری خراب ہو جائے، پیداوار ہی اتنی حاصل ہو، اور نیز اس حصے میں جو بیج علیحدہ کر رہا ہے اس میں شرکت ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اس نے کہا کہ مثلا 3 بوری میری ہوگی شروع والی، تو اس 3 بوری میں تو شرکت اس نے ختم کر دی، حالانکہ مزارعت کے عقد میں تو شرط ہی کیا ہے کہ ساری پیداوار میں شرکت ہونی چاہیے. یہ مانے اورف عرب بل بزری بزرہ، یا شرط لگا دی گئی بیج والے کی، بیج اٹھانے کی، او رفع الخراج و تنصیف الباقی، ای شرط رفع الخراج، ان کا عطب وہ قفزان پر ہو رہا ہے پیچھے بھائی، اور یا شرط لگا دی گئی رفع الخراج، خراج کے اٹھانے کی، خراج کے نکالنے کی، و تنصیف الباقی اور باقی کو آدھا آدھا کرنے کی. بھائی دیکھیے بعض زمینیں عشری ہیں ہوتی ہیں اور بعض کیا ہوتی ہیں؟ خراجی. خراج وہ جو ٹیکس غیر مسلموں پر لگاتے تھے، مسلمان جب کسی علاقے کو فتح کر لیتے تو زمینیں جب انہی لوگوں کے پاس رہنے دیتے تھے تو ان پر ٹیکس لگا دیتے تھے کہ ہر ایکڑ پر مثلا فصل کا جتنا بھی طے کر لیں 20واں حصہ دینا ہے، یا 30واں حصہ فصل کا دینا ہے، یا 10واں حصہ دینا ہے، یا بعض اوقات وہ معین خراج مثلا لگا دیا کہ 1 ایکڑ پر مثلا 100 قفیز ادا کرنے ہوں گے آپ کو. ایک تو صورت کیا تھی کہ حصہ مقرر کیا جاتا ہے، مثلا تو حصہ مقرر کر دیا کہ فصل کا 10واں حصہ دینا ہے. 10واں حصے کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ معلوم ہو 9 حصے باقی بچ جائیں گے اس آدمی کے پاس، تھوڑی فصل ہو یا زیادہ ہو، جب 10واں نکالنا ہے تو تھوڑی ہوگی تو 10واں بھی تھوڑا نکلے گا اور باقی 9 حصے اس کے پاس رہ جائیں گے. اور اگر آپ متعین کیا کرتے ہیں کہ ہر ایکڑ پر کتنے دینے ہیں؟ 100 من، تو گویا یہ جو خراج ہے یہ 2 قسم کا ہو گیا، ایک خراج موظف اور ایک خراج مقاسمہ، یہ آگے ذکر بھی آ رہا ہے. کتنی قسم کا ہو گیا؟
دو قسم.
ایک خراج موظف जो मुतायन खराज है कि मसलन एक एकड़ पर आपने 100 कफीज अदा करने हैं, दो एकड़ों पर 200 अदा करोगे, तीन एकड़ों पर 300 अदा करोगे, ये क्या है? खराजे मुअज्जब। और एक खराज मुकासमा है जिसमें तकसीम होती है कि दसवां हिस्सा देना है, नौ हिस्से आपके होंगे, जितनी भी पैदावार हुई दसवां हिस्सा अदा करेंगे और नौ हिस्से आपके होंगे। तो कहते हैं भाई अगर अगर मुजारात के अंदर खराज मुअज्जफ के खराज के निकालने की शर्त लगाई तो यह अकद बातिल हो जाएगा। मसलन मालिक ने क्या कहा, मेरी जमीन पर खराज है, कितना खराज है? खराज खा के फतहा के साथ है, ठीक है, हाँ, हमारे यहां राइज क्या है, खा के कसरा के साथ खराज। तो खराज क्या, मालिक ने क्या कहा, मेरी जमीन है इस पर खराज है, इतने मुझे हर एकड़ पर कितना देना पड़ता है, 100 कफीज देने पड़ते हैं, 100 कफीज देने पड़ते हैं। तो पहले वो खराज निकालेंगे, बाकी फसल तुम्हारी और मेरे दरमियान आधी आधी होगी। तो वो जो 100 कफीज निकालने हैं उसमें शिरकत क्या कर दी उसने, खत्म कर दी। तो इस सूरत में अकद क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, क्योंकि मुजारात का तकाजा तो ये था कि फसल की हर चीज हर हिस्से में, चाहे थोड़ी हो या ज्यादा, सारी फसल सारी पैदावार में शिरकत होनी चाहिए। ये माना है और रफ़उल खराजी, और अगर शर्त लगा दी गई खराज को निकालने की, वह तंसीफुल बाकी और बाकी को आधा आधा करने की, तो फिर इस सूरत में भी ये क्या हो जाएगी, बातिल हो जाए। कहते हैं हाजा इजाकान अल खराजु खराजन मुअज़्ज़फ़न, ये उस वक्त है जब वो खराज खराज मुअज़्ज़फ़ हो, क्या हो, कौन सा खराज मुअज़्ज़फ़, क्या माना, एक एकड़ के बदले मसलन 100 कफीज है, ये वाली सूरत जो खराज मुअज़्ज़फ़ वाली है। अम्मा इज़ाकान अल खराज खराज मुकासमतिन, और अगर वो खराज खराज मुकासमत हो, यानी हिस्सा देना है, नौवां हिस्सा देना है या पंद्रहवां देना है या बीसवां देना है, जो भी मुकर्रर है, तो देखिए किताब पर, अम्मा इज़ाकान अल खराज खराज मुकासमतिन, और अगर खराज जो है वो खराज मुकासमत हो, कर रुबू वल खुमोसी, जैसे रुबो हो या खुमोस हो, तो ला यफ़सुदुल अक़्दु, तो इस सूरत में अक़्द फासिद नहीं होगा। कमाशुरी तरफ उल ओशरी, जैसे कि शर्त लगाई जाए ओशर को उठाने की, किसके हो, ओशर को उठाने की। भाई आप जानते हैं कि जो भी पैदावार जमीन से हासिल हो उस पर क्या देना पड़ता है, ओशर देना पड़ता है, दसवां हिस्सा, ये उसकी जकात है, अदा करनी पड़ती है, फुकरा मसाकीन को देंगे। सूरत समझ में आ रही है। और अगर आप जमीन को सैराब करते हैं, उस पर आपका खर्चा होता है, पानी वगैरह का खर्चा होता है, तो फिर शरीयत ने आसानी कर दी, फिर बीसवां हिस्सा दो, 19 हिस्से आपके और सिर्फ एक हिस्सा क्या करो, वो दो गुरबा को, फुकरा को। तो अगर आकदे मुजारात में शर्त लगा ली कि जो भी पैदावार होगी पहले उशर निकाल के अलग करेंगे, बाकी फसल तुम्हारे और मेरे दरमियान आधी आधी होगी, तो कहते हैं ये ठीक है भाई, क्योंकि उशर कितना हिस्सा है, मसलन दसवां हिस्सा है, तो नौ हिस्से इनके पास बच जाएंगे भाई। तो शिरकत कोई मुअय्यन मकदार का इस्तेसना किया
नहीं,
नहीं नहीं, कोई 100 कफीज अगर होते कि 100 कफीज निकाल, तो फिर तो भाई 100 कफीज, भाई उशर जब भी निकालना है, सारी फसल ही 10 कफीज हुई तो एक कफीज देंगे, 9 कफीज बचेंगे या नहीं, क्योंकि उशर कितना हिस्सा देना है, दसवां, तो उसमें शिरकत खत्म नहीं हो रही, कहीं पर भी शिरकत खत्म नहीं हो रही। उशर दे दिया, बाकी सारे 9 हिस्से इन दोनों के पास बच जाएंगे, कहीं पर भी शिरकत खत्म नहीं। लेकिन जब आप मुअय्यन कफीज तय कर देते हैं कि 100 कफीज मैं लूंगा या 100 कफीज निकाल के अलग करेंगे और बाकी में आधा आधा होगा, तो हो सकता है फसल हो ही कितनी, 100 कफीज या उससे भी कम हो, तो उन 100 कफीज में तो आपने क्या कर दी है, शिरकत खत्म कर दी। फर्क दोनों में समझ में आ रहा है? तो कहते हैं कमाशुरी तरफ उल उशरी, जैसे कि शर्त लगाई जाए उशर के उठाने की, उशर के निकालने की, तो जैसे उससे अकद फासिद नहीं होता, तो खराज मुकासमा से भी अकद मुजारात फासिद और बातिल नहीं होता। बात समझ में आ गई? लिअन्नहाज़ा ला युअद्दी, ये इसकी दलील जिक्र कर रहे हैं कि खराज मुकासमा और उशर निकालने की सूरत में यह अकद फासिद, खराज मुकासमा की शर्त लगाई या उशर निकालने की शर्त लगाई, क्यों? लिअन्नहाज़ा ला युअद्दी इला कत्ई शिरकती, इसलिए क्योंकि यह कत्ई शिरकत की तरफ ले जाने वाला नहीं, इसकी वजह से शिरकत खत्म नहीं होती। उशर निकालोगे, एक उशर एक हिस्सा निकालोगे तो बाकी नौ हिस्से बच गए, उसमें क्या है? शिरकत है सारे के अंदर। लिअन्ना हाज़ा ला युअद्दी इला क़त्अ शिरकति, इसलिए क्योंकि ये पहुंचाने वाला नहीं है शिरकत के खत्म करने की तरफ। अवित्ति बनू लि अहदिहिमा वल हब्बु लिल आखर। भाई अब और सूरतें जिक्र कर रहे हैं कुछ, कि अगर शर्त लगा दी, फसल मसलन गंदुम वगैरह है तो इसमें एक तो वो दाने होते हैं जो गल्ला है, और एक उसका जो भूस बच जाता है जिसे फिर चारे वगैरह के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, जो तिनके वगैरह हैं उसके फसल के, बात समझ में आ रही है? तो एक है दाने और एक है भूस। आप मुझे बताइए, फसल जब कोई काश्त करता है तो दाने मकसूद होते हैं या भूस मकसूद होता है? दाने मकसूद होते हैं भाई। हां, भूस भी तबान साथ हासिल हो जाता है। तो अब मसलन दाने और भूस जो है उनकी आपस में शर्त तय करते हैं। शर्त क्या तय की? कि फसल होगी, दाने सारे मेरे होंगे, भूस तुम्हारा होगा, या दाने आधे आधे कर लेंगे और भूस सारा मैं रखूंगा, या भूस आधा आधा कर लेंगे और दाने सारे तुम्हारे हो जाएंगे। कई सूरतें बन जाती हैं भाई, कई सूरतें। तो याद रखिए एक जाब्ता, कि जब ये आकदे मुजारात फासिद होता है ना, फासिद होता है, वैसे तो ये दोनों इसमें शरीक हैं, जो फसल आ रही है दोनों उसमें क्या हैं? शरीक हैं। लेकिन अगर ये मुजारात फासिद हो जाए तो ये जो फसल होती है ये बीज वाले की शुमार होती है। कोई ऐसी शर्त लगा दी जो मुक्तज़ा अक़द के खिलाफ थी, मसलन क्या शर्त लगा दी? हां, एक एकड़ में मेरी होगी, या फला या इतने कफीज मेरे होंगे, इस तरह कोई सूरत कर ली, बात समझ में आ गई? तो जो भी शर्त मुक्तज़ा अक़द के खिलाफ लगाई तो यह अक़द फासिद हो जाएगा, और जब अक़द मुजारात फासिद हो जाए तो यह सारी फसल जो है बीज वाले की शुमार होगी, कि इस सारी फसल का मालिक यह है, और दूसरे को फिर वो किराया दे देगा। मसलन अगर बीज किसका था? जमीन वाले का, जमीन भी उसकी थी, बीज भी उसकी, और बीच में कोई ऐसी शर्त लगा दी थी जो मुक्तज़ा अक़द के खिलाफ, तो अक़द क्या हो गया? फासिद हो गया। तो अब ये फसल किसकी शुमार होगी? जमीन वाले की शुमार होगी, जो बीज वाला है, जिसके बीज था। जब इसका बीज है तो दूसरे ने भी तो मेहनत की है, छह महीने तक लगा रहा है, मेहनत करता रहा, कहते हैं भाई उसको उसका अजरे मिसल दे देंगे, इस जैसे शख्स की इतनी मेहनत की जो मजदूरी बनती है वो दे दी जाएगी, मजदूरी दे दी जाएगी, और फिर वो मजदूरी भी जितना इसका हिस्सा बनता है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मसलन जो फसल हासिल हुई उसके मुताबिक इसके 100 मन बनते थे, कितने मन? 100। और वो 100 मन 50,000 के हैं, मेहनत करने वाले का हिस्सा कितना बन रहा है? 50,000 का हिस्सा बन रहा है। लेकिन अक़दे मुजारा तो फासिद हो गया, अब इसको फसल तो नहीं देनी, हमने क्या देना है? अजरे मिसल। अजरे मिसल का हमने हिसाब किया, इस जैसा आदमी इतने महीने तक काम करे तो उसको उजरत कितनी दी जाती है, तो देखा गया वो 60,000 बन रहा है। अब ये उसका जो हिस्सा था उससे बढ़ गया, लिहाजा जो जायद है वो नहीं देंगे, कितना देंगे? 50,000 ही देंगे, जितना इसका हिस्सा बन रहा है उतना ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, बात समझ में आ रही? ये शेखैन रहमहुमल्लाह के नजदीक, आगे आपको बताएंगे भी, जबकि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं नहीं, अजरे मिसल देंगे, जितना भी बनता है, चाहे 60 बनता है, चाहे 70, चाहे 80, जितना भी जायद बनता है वो उसको दिया जाएगा भाई। कि जब आकदे मुजारात फासिद हो जाए तो ये फसल किसकी शुमार होगी? बीज है, जिसका बीज है, चाहे जमीन वाले का बीज है, चाहे मेहनत करने वाले का। और अगर मेहनत करने वाले का बीज है, जो मजदूर है, बीज उसका है, तो फसल उसकी, फिर वो जमीन वाले को जमीन का किराया दे देगा उस उतने अरसे का। सूरत समझ में आ गई? अजरे मिसल भाई। अब याद रखो, फसल में असल मकसूद दाने होते हैं, असल मकसूद दाने, लिहाजा दानों में शिरकत जरूरी है। अगर दानों में शिरकत को खत्म करते हैं अकद फासिद हो जाएगा। एक कहते हैं दाने मेरे होंगे, नहीं भाई, दाने ही तो मकसूद हैं, दानों के लिए तो फसल उगाई जाती है, तो आपने तो शिरकत क्या कर दी? مقصود کے اندر ہی شرکت ختم کر دی، لہذا یہ عقد کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ دانوں میں شرکت کی ختم کرنے کی شرط لگائی تو عقد کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا. تو میں نے آپ کو کیا بتلایا کہ یہ جو مقصود ہے اس میں تو شرکت ضرور چاہیے، اور یہ جو بھوس ہے یاد رکھو اگر عقد فاسد ہوتا ہے تو یہ کس کی فصل ہے؟
بیج
والے کی. تو لہذا عقد کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بھوس بھی اسی کا ہونا چاہیے. دانے تو آدھے آدھے، ٹھیک ہے، اسی پہ تو عقد ہوا ہے، اور بھوس کس کا ہونا چاہیے؟ اگر ذکر نہیں کیا تو یہ کس کا ہونا چاہیے؟ بیج والے کا، کیونکہ فصل اس کی ہے، فصل اس کی ہے. جب اگر فاسد ہو، اس وقت تو شریک ہیں دونوں، لیکن اگر فقط فاسد ہوتا تو فصل کس کی ہوتی؟
بیج
والے کی. لہذا دانوں میں بھی شرکت ضروری، اور بھوس کو اگر ذکر نہیں کرتے تو بھوس بیج والے کا ہوگا. یا بھوس کو ذکر تو کیا لیکن کیا کہا؟ کہ یہ بیج والے کا ہوگا. بیج والا کیا کہتا ہے؟ یہ بھوس بھی میرا ہوگا. تو بالکل ٹھیک ہے، یہ شرط لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مقتضی عقد کے مطابق شرط لگائی. عقد بھی یہی تقاضا کر رہا ہے، بیج اس کا ہے تو بھوس بھی اس کا ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اگر بھوس کی شرط لگائی دوسرے آدمی کے لیے، مثلا زمین والا کہتا ہے بھوس میرا ہوگا اور بیج دوسرے کا ہے، تو یہ ایسی شرط لگا دی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے، لہذا یہ عقد مزارات کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ جی، صورت سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے بھائی، کہتے ہیں اوی تب نلی احدہما، یہ تب کا عطف پیچھے جو آیا تھا نا، قفزان ای ان شورتا تب نلی احدہما والحب للآخر. اور اگر تیبن کہتے ہیں تینکے، وہ بھوس مراد ہے بھائی، جو تینکے وغیرہ فصل کے بچ جاتے ہیں. اب تیبن لی احدہما، یہ شرط لگا دی گئی بھوس کی ایک کے لیے، والحب للآخری، اور دانوں کی دوسرے کے لیے، تو اس صورت میں بھی یہ کیا ہو جائے گا؟ عقد فاسد ہو جائے گا. لقطع الشرکۃ فیما هو المقصود، بوجہ شرکت کے ختم ہو جانے کے اس چیز کے اندر جو کہ مقصود ہے، یعنی دانوں کے اندر شرکت ختم ہو رہی ہے. او تنصیف الحب، یا شرط لگا دی گئی کہ دانے آدھے آدھے کریں گے. والتبن لغیر رب البزر، اور جو بھوس ہوگا وہ غیر رب البزر کا ہوگا، لغیر رب البزر، بیج والے کے علاوہ دوسرے کا ہوگا، تو اس صورت میں بھی عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، کیونکہ ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے خلاف. کہتے ہیں لئنہ خلاف مقتضی العقد، کیونکہ یہ شرط جو ہے مقتضی عقد کے خلاف ہے. عقد تو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہ بھوس بیج والے کا ہونا چاہیے نہ کہ دوسرے کا. واو تنصیف التبن والحب لأحدهما، یا شرط لگائی دی گئی کہ بھوس آدھا آدھا ہوگا، والحب لأحدهما، اور دانے ایک کے ہوں گے، تو بھی مقصود میں شرکت ختم ہوئی، لہذا یہ عقد صحیح نہیں. یہ معنی لقطع الشرکت فی المقصودی، بوجہ شرکت کے قطع ہو جانے کے، ختم ہو جانے کے مقصود کے اندر. فَإِن شُرِطَ تَنصِيفُ الْحَبِّ وَالتِّبْنُ لِصَاحِبِ الْبَزْرِ، اور اگر شرط لگا دی گئی کہ دانے آدھے آدھے ہوں گے، اور تیبن جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ بھوس جو ہے وہ دانے آدھے آدھے ہوں گے، وَالتِّبْنُ لِصَاحِبِ الْبَزْرِ، اور بھوس جو ہے بیج والے کا ہوگا. او لم یتعرض لتبنی، یا تبن کے پیچھے نہیں پڑے، یعنی اس کو ذکر ہی نہیں کیا سرے سے. دانوں کا تو ذکر ہوا، دانے کیا کریں گے؟ آدھے آدھے تقسیم کریں گے، لیکن بھوس کو ذکر ہی نہیں کیا. کہتے ہیں تو بھی عقد صحیح ہو جائے گا. کہتے ہیں بھائی پھر یہ کس کا ہوگا بھوس؟ کہتے ہیں بھائی یہ بیج والے کا ہوگا. بعض فقہا کیا فرماتے ہیں؟ یہ کس کا ہوگا؟ جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، بھوس بیج کے تابع ہے، لہذا جب بیج آدھے آدھے ہیں تو بھوس بھی آدھا آدھا ہوگا. یا جس طرح تقسیم کیا ہے، اگر دانے ایک کا ایک سلوس ہے اور دوسرے کے دو سلوس ہیں، تو بھوس بھی اسی حساب سے تقسیم ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بعض کیا فرماتے ہیں کہ بھوس کس کا ہوگا؟ بیج والے کا، اور جب اس کو ذکر نہیں کیا، اور جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ بھوس جو ہے وہ بھی دانوں کی طرح تقسیم ہوگا، اس کے تابع ہوگا. تو کہتے ہیں فَإِن شُرِطَ تَنْصِیفُ الْحَبِّ، اگر شرط لگا دی گئی دانوں کو آدھا آدھا کرنے کی، وَالتِّبْنُ، اور شرط لگا دی گئی تیبن کی، لِصَاحِبِ الْبَذْرِ، کس کے لیے؟ بیج والے کے لیے. اولم يتعرض للتبن، یا تیبن کے درپے نہیں ہوئے، یعنی اس کو ذکر ہی نہیں کیا، صحت، تو بھی مزارعات صحیح ہو جائے گی. لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ الشرط مقتضى العقد، اس لیے کیونکہ پہلی صورت میں شرط جو ہے وہ مقتضى عقد ہے. شرط کیا ہے؟ مقتضى عقد ہے. تو شرط جو ہے مقتضى عقد کے مطابق ہے. فَإِنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ، کیونکہ کیا شرط لگائی پہلی؟ بھئی دو صورتیں ذکر کی نا، پہلی صورت کیا ذکر کی؟ کہ دانے آدھے آدھے ہوں گے اور بھوس بیج والے کا، تو عقد بھی ہی تقاضا کر رہا ہے، بیج اس کا ہے تو بھوس بھی اسی کا ہونا چاہیے، تو ایسی شرط لگائی جو مقتضا عقد کے مطابق ہے. اور اگر بھوس کو ذکر ہی نہیں کیا تو پھر اس صورت میں بھی بھوس اسی کا ہوگا، بیج والے کا ہوگا. تو کہتے ہیں لئن فی الاول، اس لیے کیونکہ پہلی صورت میں الشرط مقتضا العقد، شرط جو ہے وہی مقتضا عقد بھی ہے، کہ فَإِنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ، کیونکہ وہ اسی کی ملکیت کی افزائش ہے. نما کا معنی بڑھوتری، زیادتی. بیج کس کا تھا؟ بیج والے کا. تو یہ تنکے کہاں سے آئے؟ یہ اسی کے بیجوں کی بڑھوتری ہوئی، اسی کے بیج بڑھ گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بیج کا مالک یہ تھا، تو جو آپ جس چیز کے مالک ہیں اس چیز میں جب زیادتی ہو تو اس کے بھی مالک آپ ہی ہوں گے. بھائی گائے بھینسیں آپ کی ہیں، تو ان کے جب بچے ہوں گے وہ بھی کس کے ہوں گے؟ آپ کے ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کی ملکیت میں زیادتی ہوئی ہے. تو یہاں بیج جو اس کی ملکیت تھے ان میں زیادتی ہوئی ہے، اور بھوس بھی ملا ہے، تو بھوس بھی اسی کا ہونا چاہیے، بیج والے کا. بات سمجھ میں آ گئے؟ یہ معنی ہے فَإِنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ، کیونکہ یہ اسی کی ملکیت یعنی بیجوں کی افزائش ہے، بڑھوتری ہے. وَفِي الثَّانِي، اور دوسری صورت کون سی تھی؟ جب بیجوں، جب بھوس کا ذکر ہی نہیں کیا. تو کہتے ہیں وفی الثانی، دوسری صورت میں، الشرکت فی ما هو المقصود حاصلۃ، کہ شرکت اس چیز کے اندر جو کہ مقصود ہے، یعنی دانے جو ہیں، حاصلۃ، ان میں شرکت حاصل ہو رہی ہے. وحین اذن التبن لصاحب البذر، اس صورت میں بھوس جس کو ذکر ہی نہیں کیا، اس کو بھوس جو ہے لصاحب البذر، وہ کس کے لیے ہوگا؟ بیج والے کے لیے ہوگا. وعند البعض، اور بعض کے نزدیک، مشترکن طبعا للحب، وہ بھوس جو ہے مشترک ہوگا دانوں کے تابع ہوتے ہوئے. دانے آدھے آدھے تھے تو بھوس بھی، تو بھوس اس کے تابع ہے، وہ بھی آدھا آدھا ہوگا، یا جتنے حصے طے کیے ہیں اس کے مطابق جیسے دانے تقسیم ہوں گے اسی طرح بھوس بھی تقسیم ہوگا. تو یہ بعض فقہا فرماتے ہیں. بھائی بھائی آپ نے مزارعت کے بارے میں پڑھا کہ مزارعت میں وہ زمین جو ہے بٹائی پر دی جاتی ہے، کہ فصل دونوں کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہوگی. یہاں ایک اور بات یاد رکھنا کہ یہ بات مزارعت کی چل رہی ہے، اور اس کے اندر یہاں مزارعت کی بات چل رہی ہے، زمین بٹائی وغیرہ پر دینا، جبکہ ایک ہے زمین کو ٹھیکے پر دینا. اس میں فصل کی تقسیم کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ اتنے پیسوں میں میں یہ کھیت تمہارے حوالے کرتا ہوں. تو وہاں پر کرنسی یا درہم دینار وغیرہ طے ہوتے ہیں، اور اس کو ٹھیکہ کہتے ہیں، ٹھیکے پر زمین کو دینا، اور یہ بال اتفاق تمام ائمہ کے نزدیک جائز ہے. تو یہ جو اختلاف ہے وہ کس کے اندر ہے؟ مزارعت کے اندر ہے، جس میں فصل جو ہے بٹائی پر دی، جس میں زمین بٹائی پر دی جاتی ہے، کہ جو فصل حاصل ہوگی وہ آدھی آدھی ہوگی اتنے اتنے حصے کے مطابق، جبکہ ٹھیکے پر زمین کو دینا جس میں حاصل ہونے والی فصل کی بات نہیں، وہ حاصل ہونے والی فصل اسی شخص کی ہوگی جس نے ٹھیکے پر زمین لی ہے، تو وہ بال اتفاق جائز ہے، اور وہ اس میں عوض کے طور پر کرنسی، سونا چاندی جو بھی طے کر لیا جائے وہ جائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ خلاصہ کلام یہ ہوا بھائی، مزارعت آپ نے پڑھا، कि जमीन को बटाई पर देना, खेत वगैरह को बटाई पर देना, यानी किसी को काश्त के लिए देना कि वो उसमें मेहनत करेगा और जब फसल तैयार हो जाएगी तो जो तय हुआ था उसके मुताबिक हिस्से तकसीम होंगे। अगर निसफ निसफ की बात हुई थी तो आधी फसल मेहनत करने वाले की, आमिल की, और आधी जमीन के मालिक की। यह जिस तरह तय हुआ था, सुलुस और दो सुलुस तय हुए थे या रुबो और तीन रुबो तय हुए थे, तो एक को रुबो मिल जाएगा, दूसरे को तीन रुबो भाई। और आपने पढ़ा कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक ये आकद जायज नहीं है भाई, आकद जायज नहीं है। एक दलील तो उनकी ये जिक्र फरमाई इमाम साहेब की कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुखाबरा यानी मुजारात से मना फरमाया है, और दूसरी दलील ये क्योंकि ये कफीजुत्तहान के माना में है। मैंने बतलाया कफीजुत्तहान किसे कहते हैं कि किसी शख्स की मजदूरी जो है उसी चीज को मुतायन करना, मुकर्रर करना जो उसके अमल से बने भाई, जो उसके अमल से हासिल हो। तो जैसे आटा पीसने वाले से लोग अमूमन क्या मामला करते हैं कि 40 कफीज का मसलन आटा बनवाना है तो उसमें से एक कफीज आप ले लीजिएगा, तो वो उसका काम भी क्या है, आटा बनाना, और उजरत में भी आप क्या दे रहे हैं, आटा ही दे रहे हैं। तो ये आटा तो उसी के अमल से बन रहा है, तो उजरत में ऐसी चीज तय करना जो उसी अमल करने वाले के अमल से हासिल हो, ये जायज नहीं है भाई। बात समझ में आ गई, क्योंकि फिलहाल आप उसके अदा करने पर कादिर नहीं है भाई, हालांकि उजरत तो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके अदा करने पर आप कादिर हो भाई। जब तक वो अमल नहीं करेगा आटा नहीं हासिल होगा, जब तक आटा नहीं हासिल होगा आप आटा दे ही नहीं सकते। तो उजरत ऐसी चीज तय कर रही जो उसके अमल से हासिल हो रही है, वो आटा पीसेगा तो आप उसके अदा करने पर कादिर हैं, क्योंकि आपने उजरत क्या तय की है, आटा तय किया है, और आटा तो उसके अमल से हासिल हो रहा है, वो अमल नहीं करता तो आप ये आटा अदा करने पर कादिर भी नहीं। ये इसी तरह है जैसे किसी शख्स से आप कहते हैं कि यहां से ये 40 बोरी गंदुम फलां गांव में मेरे पहुंचा दो, तो उसमें से फिर एक बोरी आपकी। अब आपने उसको उजरत कहां देने का इरादा किया है, गांव के अंदर 40 बोरी जब ले जाओगे तो उसमें से एक बोरी आपकी हो जाएगी भाई, तो आप इस वक्त उसके अदा करने पर कादिर नहीं है, क्योंकि बोरियां तो यहां हैं और आपने क्या कहा है, जब ले जाओगे तो वहां आपकी एक बोरी। देखा सूरत समझ में आ रही है भाई, तो बोरी और गंदुम तो इस वक्त यहां है पर है, वहां पर है ही नहीं, आप उसके अदा करने पर गोया कादिर ही नहीं है भाई। तो यहां पर भी मुजारात के अंदर भी इमाम साहब फरमाते हैं कि आमिल यानी मजदूर की मेहनत से फसल हासिल हो रही है और उसी फसल को आप उसको उजरत के तौर पर दे रहे हैं, मसलन निसफ देंगे या सुलुस देंगे या रुबो देंगे, तो जो चीज उस आमिल के अमल से हासिल हो उसी को उजरत में तय किया जा रहा है। तो ये किस माना में हुआ, कफीजुत्तहान के माना में हुआ भाई। जबकि साहिबैन रहिमहुमल्ला फरमाते हैं कि ये मुजारात जायज है, एक तो तआमुल है, लोग ये मामला करते हैं आपस में, हर जगह इस तरह का मामला लोग करते हैं भाई, चाहे अरब हो चाहे आजम हो, हर जगह ये मामला चलता है, लोग जमीनें बटाई पर देते हैं भाई, जमीन एक की होती है, मेहनत दूसरे की होती है, और फसल के बारे में तय कर लेते हैं कि इतना इतना हिस्सा आपस में तकसीम करेंगे। और दूसरी दलील ये, तो पहली दलील उनकी तआमुल है लोगों का, दूसरी दलील जो है कि लोगों को इसकी जरूरत भी है, मोहताज भी हैं इसके, क्योंकि एक शख्स के पास जमीन तो होती है लेकिन वो ज़ईफ है, मेहनत नहीं कर सकता, और दूसरा शख्स मजबूत है, ताकतवर है, लेकिन उसके पास जमीन नहीं है, तो दोनों मोहताज हुए एक दूसरे की मदद के, तो लिहाजा इस आकद की गुंजाइश होगी। और नीज वो इसको कयास करते हैं मुजारबत पर, मुजारबत के अंदर भी पैसा एक का होता है, मेहनत और तिजारत और तजर्बा दूसरे का होता है, और फिर जो नफा हासिल होता है उसको आपस में तकसीम कर लेते हैं, तो ये मुजारबत की तरह हुआ, और मुजारबत जायज है तो ये भी जायज है भाई। और मैंने आपको ये भी बतलाया कि ये जो फसल है ये बीज वाले की है भाई, किसकी है, क्योंकि उसी बीज से पैदा हुई, बीज जिसका, तो और जिसका बीज और जिसकी चीज होती है उसमें जो उस चीज के अंदर जो ज्यादती हो जाए वो भी उसी शख्स की होती है। आपकी गाय भैंसे हैं तो उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी आप ही के होंगे भाई, तो यहां पर भी उसी बीज के अंदर अफजाइश हुई, ज्यादती हुई है, वो बढ़ गया और बढ़कर पौधा बना और उस पर वो दाने लग गए, तो फसल गोया किसकी है? बीज वाले की। लिहाजा अगर किसी वजह से फसाद आया और ये आकद इसको फासिद करार देना पड़ा, तो फिर इस सूरत में ये फसल उस शख्स की शुमार होगी जिसका बीज था। अगर वो आमिल का बीज था तो आमिल की फसल शुमार होगी, और अगर जमीन वाले की तरफ से बीज था तो जमीन वाले की फसल शुमार होगी, और दूसरे को फिर अजरे मिसल दिया जाएगा। मसलन अगर बीज जमीन वाले का है तो ये आमिल के उतने दिनों की जो मेहनत की उजरत बनती है वो उजरत उसको दे दी जाएगी, और अगर बीज जो है आमिल का है तो फिर फसल आमिल की शुमार होगी और जमीन वाले को उतनी मुद्दत जमीन का जो किराया बनता हो वो किराया दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने इस मुजारात की शर्तें जिक्र की, और आठ शर्तें जिक्र की। पहली शर्त यह जिक्र की कि जमीन के अंदर काश्त की सलाहियत होनी चाहिए, ये ना हो जमीन जो है रेत का एक टुकड़ा है उसे, या पथरीली जमीन है तो जमीन में क्या होनी चाहिए, काश्त की सलाहियत होनी चाहिए, और नीज दोनों अकद करने वाले उनमें वो अहल होने चाहिए, यानी बालिग आकिल बालिग होने चाहिए। अलबत्ता मैंने बतलाया कि अगर बच्चा है समझदार है और वो भी ये अकद कर सकता है, इसी तरह आबदे माजून वगैरह हो तो वो भी ये अकद कर सकते हैं, तो आकिल होना चाहिए भाई, आकिल भाई। और तीसरी शर्त ये थी कि मुद्दत को जिक्र किया जाए कि कितनी मुद्दत के लिए है। मैंने बतलाया कि हमारे इलाकों के अंदर, अब यहां बरेसगीर में यहां मुद्दत को अमूमन जिक्र नहीं किया जाता, बस जो पहली फसल होती है उस मुद्दत तक ये मुजारात शुमार होती है, मुद्दत को जिक्र नहीं करते। तो पहली फसल जो होती है वो जैसे ही फसल हासिल होगी पक जाएगी तो ये आकद मुकम्मल हो जाएगा। और इसी तरह बीज कौन देगा ये भी जिक्र करना जरूरी है। वह जिन्स ही ऐ जिन्सिल बजरी, बजर की जिन्स यानी बीज की जिन्स भी जिक्र करना जरूरी है ताकि पता चले कौन सी फसल काश्त कर रहे हैं। तो जिन्स ही कि हाज अमीर किसको राजे, बजर को राजे भाई, और दूसरे को कितना हिस्सा देंगे यानी निसफ निसफ होगा या सुलुस और दो सुलुस या रुबो और तीन रुबो के एतबार से जिस तरह भी तकसीम करेंगे, और नी जमीन और आमिल के दरमियान खलवत कर दी जाए यानी उनको जमीन को आमिल के हवाले कर दिया जाए भाई, उसमें फिर कोई दखल न दिया जाए। और फिर इन्होंने आपको यह भी बतलाया कि पैदावार में शिरकत होनी चाहिए, लिहाजा अगर किसी ने कुछ मखसूस कफीज जो हैं उनकी उनको अलहदा कर दिए निकाल दिए शिरकत से कि पहले मसलन 100 कफीज मेरे होंगे और बाकी जितना होगा उसमें आधा आधा हमारा हिस्सा होगा, तो इस सूरत में ये आकद फासिद हो जाएगा, क्योंकि शिरकत खत्म हो रही है। वो जो फर्ज करो अगर 100 ही कफीज हासिल हुए, फसल खराब हो गई, तो उस 100 में तो शिरकत है ही नहीं, वो 100 तो पहले एक शख्स के लिए तय हुए हैं, उसको मिल जाएंगे, दूसरे को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सूरत समझ में आ रही है? इसी तरह अगर तय किए कि मसलन फलां मकाम पर जो फसल होगी, फलां एक ही कोने पर जो एक एकड़ के अंदर या 10 कनाल के अंदर जो फसल होगी वो सारी मेरी होगी, जमीन वाला कहता है, और बाकी फसल हम दोनों के दरमियान आधी आधी होगी, तो भाई हो सकता है बाकी सारी फसल खराब हो जाए, कोई आफत आ जाए, सिर्फ वहीं से कुछ फसल हासिल हो जाए और वो सारी तो किसकी है, जमीन वाले की, तो देखो शिरकत तो बिल्कुल खत्म हो गई। तो ऐसी कोई शर्त लगाना जो शिरकत को खत्म करने वाली हो वो इस अकद को फासिद कर देगी। या बीज वाले ने कहा पहले मैं अपने बीज के बकदर फसल निकाल लूंगा वो मेरी होगी, बाकी फिर आधी आधी तकसीम करेंगे, या खराज के उठाने की शर्त लगाई कि पहले खराज निकालकर अलग करेंगे बाकी फसल आधी आधी होगी, तो कहते हैं इस सूरत में भी अकद फासिद हो जाएगा, क्योंकि कुछ मुअय्यन मिकदार की तखसीस कर ली जिसमें शिरकत नहीं है, हो सकता है बाकी फसल खराब हो जाए सिर्फ इतनी ही मिकदार हासिल हो, तो शिरकत तो खत्म हो गई इसके अंदर भाई। सूरत समझ में आ गए? लेकिन उन्होंने आपको बतलाया कि खराज जो है वो दो किस्म पर है, एक खराज موظف ہے اور ایک خراج مقاسمہ ہے. خراج موظف یہ ہے زمین کے اعتبار سے کہ مطلب ہر ایکڑ پر 100 قفیز, ہر ایکڑ پر 100 قفیز. تو یہ جو خراج موظف ہے اس کے اٹھانے کی شرط لگائی کہ پہلے یہ نکالیں گے اور پھر باقی فصل آدھی آدھی ہوگی. تو اس صورت میں عقد کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے 100 قفیز ہی حاصل ہوں بھائی فی ایکڑ, اس سے زیادہ حاصل ہی نہ ہوں, اور وہ سارا تو کس میں چلا جائے گا؟ خراج میں چلا جائے گا. تو دیکھو شرکت ختم ہو گئی. ہاں اگر اس کے بجائے خراج مقاسمت کی شرط لگائی کہ خراج مقاسمت یہ کہ مثلا 10واں حصہ دیں گے یا 20واں حصہ ہے, تو پھر اس صورت میں عقد فاسد نہیں ہوگا, کیونکہ 10واں حصہ اگر خراج مقاسمہ ہے تو 10واں حصہ نکال بھی لو تو 9 حصے باقی بچ گئے بھائی, اس میں تو شرکت ہے. اسی طرح کہتے ہیں جیسے عشر کے اٹھانے کی شرط لگا لو, مثلا پہلے عشر نکالیں گے اور پھر باقی فصل آدھی آدھی تقسیم کریں گے, یا 1 ثلث تمہارا ہوگا 2 ثلث میرے ہوں گے, جیسے بھی طے ہو جائے. تو اس صورت میں بھی عقد فاسد نہیں, کیونکہ عشر نکال لو گے تو باقی 9 حصے میں شرکت باقی رہے گی بھائی. ابھی بھی شاید آپ کے ذہن میں اشکال ہو کہ خراج موظف میں شرکت کیسے بالکل ختم ہو جاتی ہے اور خراج مقاسمت میں یا عشر اٹھانے کی صورت میں شرکت کیسے ختم نہیں ہوتی. بھائی دیکھو پھر سمجھو, دیکھو خراج موظف کیا تھا کہ شرط لگا دی مثلا فی ایکڑ 100 قفیز, وہ الگ کریں گے اور باقی فصل ہمارے اور تمہارے درمیان آدھی آدھی ہوگی. دیکھو فرض کرو ہر ایکڑ سے 100 قفیز یا اس سے بھی کم نکلتے ہیں, باقی فصل خراب ہو گئی بھائی, تو دیکھو یہ جو 100 قفیز یا اس سے کم پیدا ہوئے یہ تو کس میں چلے جائیں گے؟ خراج موظف میں. اور اس میں شرکت ہے؟ کچھ باقی حصہ بچا جس میں شرکت ہو؟ کچھ بچا ہی نہیں, شرکت ہی ختم ہو گئی بالکل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اگر خراج مقاسمہ ہو کہ 10واں حصہ دینا ہے, جب 10ویں حصے کی بات کی اب شرکت نہیں ختم ہو سکتی, بالکل نہیں ختم ہو سکتی. اب فصل پوری فصل اگر 10 قفیز بھی پیدا ہو جائے ساری تباہ ہو گئی, صرف 10 قفیز پیدا ہوئے, اس 10 میں سے بھی 1 قفیز کدھر چلا جائے گا؟ 10واں حصہ خراج میں. اور 9 حصوں میں ابھی بھی شرکت ہے یا نہیں؟ دیکھو شرکت ختم ہوگی نہیں, صرف 1 قفیز گندم پیدا ہوئی بھائی, صرف 1 قفیز تو بھی شرکت ختم نہیں. 1 قفیز کا 10واں حصہ تو خراج میں چلا جائے گا, 9 حصوں میں تو ابھی بھی شرکت ہے. اس پہلی صورت میں تو شرکت کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں تھا, شرکت والا حصہ ہی ختم ہونے کا احتمال تھا, یہاں ایسا کوئی احتمال نہیں. عشر میں بھی اسی طرح, عشر کے اٹھانے کی شرط لگائی, بھائی عشر کتنا حصہ ہے؟ 10واں حصہ. تو فصل تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, 10واں نکالو گے تو باقی 9 حصے بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ 9 حصے تو ہر حال میں بچیں گے. 100 قفیز ہوئے تو عشر کتنا؟ 10 قفیز, 90 قفیز شرکت والے بچ گئے. اگر صرف 10 قفیز گندم ہوئی تو بھی 1 قفیز یعنی 10واں حصہ عشر میں, 9 قفیز ابھی بھی اس میں کیا ہے؟ شرکت ہے. اگر صرف 1 قفیز پیدا ہوا تو بھی 1 قفیز کا 10واں حصہ عشر میں اور 9 حصے کس میں؟ شرکت. تو اس میں شرکت ختم نہیں ہوتی, جب حصہ بیان کر دیا جائے پھر شرکت ختم نہیں ہوتی, لیکن اگر معین مقدار ذکر کر دی جائے پھر شرکت ختم ہو سکتی ہے. جیسے ابھی ذکر کیا کہ کس نے کہا کہ اس فصل میں 100 قفیز میرے ہوں گے, شروع میں ہی نکال لیں گے اور باقی ہم آدھا آدھا کریں گے, تو بھائی ہو سکتا ہے 100 ہی قفیز پیدا ہوں, باقی کچھ بچے ہی نہیں, شرکت تو ختم ہو گئی. اب فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ مانا ہے کہ خراج موظف کی شرط لگائی یا معین مقدار کی شرط لگائی کسی ایک کے لیے تو اس صورت میں عقد فاسد ہو جائے گا, اور اگر عشر کے اٹھانے کی شرط لگائی پہلے یا خراج مقاسمہ کے پہلے نکالنے کی شرط لگائی تو اس صورت میں عقد فاسد نہیں ہوگا, کیونکہ یہ شرکت کو ختم نہیں کرتے. اسی طرح انہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایک ہے دانے اور ایک ہے بھوس, جو تنکے وغیرہ بچ جاتے ہیں فصل کے. فصل اگائی ہی کس لیے جاتی ہے؟ دانوں کے لیے, لہذا دانوں میں شرکت ضروری ہے. لہذا دانوں کی کسی ایک کے لیے اگر شرط لگا دی, ایک کہتا ہے دانے میرے ہوں گے بھوس تمہارا ہوگا, یہ تو مقصود کے اندر ہی شرکت ختم کر دی, لہذا یہ عقد بھی فاسد ہے. تو دانے کی ایک کے لیے شرط نہیں لگا سکتے, اور بھوس कहते हैं भूस की एक के लिए शर्त लगा सकते हैं, लेकिन वो किसके लिए? बीज वाले के लिए। अगर ये शर्त लगाता है बीज वाला के भूस मेरा होगा तो फिर ठीक है, या शर्त मुक्तज़ा अक़द के मुताबिक है, क्योंकि बीज जिसका है तो ये फसल भी उसी की, तो जब फसल उसी की है तो भूस भी उसी का होना चाहिए, और उसने शर्त भी क्या लगाई है कि भूस मेरा होगा। लेकिन अगर दूसरा शख्स बीज एक का है और दूसरा शख्स शर्त लगाता है कि भूस मेरा होगा, तो यह शर्त तो मुक्तज़ा अक़द के खिलाफ है। यह ज्यादती किस में हुई? भूस कहां से आया? बीज में ज्यादती हुई, और बीज तो दूसरे का था, तो लिहाजा यह ज्यादती भी उसकी होनी चाहिए, इस दूसरे की नहीं होनी चाहिए भाई। और अगर भूस के भी आधा आधा तकसीम करने की शर्त लगाई या दानों के मुताबिक, तो भी ठीक है कि भूस और दाने दोनों आधे आधे होंगे, या एक सुलुस तुम्हारा होगा और दो सुलुस मेरे, जैसे भी तय कर लें। या अगर भूस को सिरे से जिक्र ही नहीं किया तो भी याकद ठीक है। लेकिन फिर इस सूरत में बाज फुकाहा किराम फरमाते हैं कि भूस जो है वो बीज वाले का होगा, भूस किसका होगा? बीज वाले का होगा। और जबकि बास फुकाहा फरमाते हैं कि नहीं, भूस दानों के ताबिया होगा, भूस को जिक्र नहीं किया तो जैसे दानों की तकसीम कर रहे हैं भूस की भी उसी तरह तकसीम करेंगे। बात अच्छी तरह समझ में आ गई? चलिए बस करते हैं बस भाई, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।